और किसी हॉस्पिटल में जाकर फिर मुझे मोटर चलाने पड़ेगी, करना तो पड़ेगा। रंगों को दिल करने के लिए हमने भी एक इबादत रखी है, चाहे उसको कसरत कहें, और लोगों ने भी एक कसरत रखी है, उसमें सवाब नहीं मिलेगा, हमारे हुक्म पर अमल करेगा सवाब भी मिलेगा, आखिरत भी बनेगी, दुनिया भी सुधर जाएगी और अल्लाह की नजरों में बस भी जाएगा। और इबादत में अल्लाह ने दर्जा बदल जा रखा। सुबह की हालत, नींद से हालत, नींद फादी होती है, नींद भी परेशान करती है, जगा हुआ भी है, तो अल्लाह ने फर्ज फजर की दो रखा दे, बस अल्लाह चाहता तो चार भी रख सकता था, कौन रुकने वाला था, दर्जा रखा। और जोर के वक्त जब अल्लाह को लगा मेरा बंदा बिल्कुल उसकी आंखें खुल गई हैं और बिल्कुल अटेंशन हो गया है, तैयार हो गया है, तो चार रखी। जो जो ताजा होता जाएगा अल्लाह अपने हुक्म में दर्जा बदल जा चढ़ता जाएगा। तो ये सारे हुक्म को बयान करना वो इसलिए है ताकि अल्लाह अपने बंदों पर आसानी चाहता है कि मेरे बंदे तकलीफ और मशक्कत, दूसरे लफ्जों में गधे पर करना है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैन समाज के रोजों को आप देखो, 24 घंटे में मैं सिर्फ रात में एक पानी का ग्लास पी सकते, बाकी नहीं। ये अल्लाह पर ऐसा नहीं करते 15 घंटे, हालांकि कुछ करते नहीं, आगे पीछे खाना कर लेते हैं, शहरी के वक्त दोपहर खाना जो खाते थे उससे ज्यादा शहरी के वक्त खा लेते हैं, और इफ्तार के वक्त तो सिर्फ सफाया ही होता है, फिर तरावी के बाद अलग, फिर क्योंकि रात को नींद नहीं आती है तो रात को लाड़ियों की मुलाकात करता रहेगा वो अलग, हालांकि रमजान में खाना ज्यादा होता है, और अपने आप को क्या समझ में रोजा रखता, कुछ करता नहीं है, शेड्यूल बदलता है अपना शेड्यूल, और वो अल्लाह के हुक्म को नहीं अपनी मनमानी पर चलकर 24 घंटे में एक गिलास पानी, 24 घंटे में एक गिलास पानी, वो अपनी मजहब धर्म के मुताबिक उसको रोजा समझते हैं, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं, क्यों, अल्लाह के हुक्म के ताबे रहकर। तो अल्लाह ने जो दर्जे बदल से बताए हैं वो इसलिए हैं ताकि आसानी भी हो, दुनिया में भी राहत मिल जाए, आखिरत भी सवर जाए, अल्लाह के नजदीक महबूब भी बन जाए, और जो अल्लाह के हुक्म को तोड़कर, अल्लाह के हुक्म को छोड़कर, तरीके रसूल को छोड़कर जो इबादत करेगा वो इबादत नहीं कहलाई जाएगी, वो जलालत कहा जाएगी, तो जलालत और गुमराही कही जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई आदमी कहता है फजर के वक्त में चार रकात पढ़ो, जाता है क्या है, मैं तंदुरुस्त हूं, तवाना हूं, स्ट्रांग हूं, मजबूत हूं, मैं चार पढ़ूंगा, तो इसकी मनमानी है, हालांकि दो रकात ज्यादा हो गई, खुश होना चाहिए कि चलो इसने दो रकात ज्यादा था पढ़ी, लेकिन अल्लाह के हुक्म के ताबे रहकर नहीं पढ़ी, ये गुमराही है। और ये दूसरे लफ्जों में अपनी तरफ से नई शरीयत खड़ा कर रहा है। तो अल्लाह ने दीन बयान करके बंदों के लिए सहूलतें पैदा की हैं, लेकिन एक बंदे हैं कि वो अपने ऊपर गधेपन को सवार करते हैं, अल्लाह की सहूलतों को लेते नहीं है, अल्लाह की स्कीमों को इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ने जो हुक्म आसानी के लिए पैदा किए उसमें सख्ती बहुत करते हैं, इसलिए मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में भेजा तो क्या हुक्म फरमाया, यस्रा, तुम जा रहे हो तो आसानी पैदा करियो, वला तुअस्रा, मुश्किल और तंगी पैदा मत करियो, दीन में मुश्किल और तंगी पैदा मत करियो, ताकि दीन पर अमल करने वाला यूं समझे कि इस्लाम में बड़ी सख्ती है, जैसे कि आज का अमेरिकन, आज का यूरोपियन और आज का मगरबी मुल्क में रहने वाला इंग्लिश मुल्क, अंग्रेजी मुल्क में रहने वाला यूं समझता है कि इस्लाम ने औरत पर बड़ी सख्ती की है, हालांकि इस्लाम ने औरत की सेफ्टी की है, तो वो पागल क्या समझ रहे हैं कि इस्लाम में औरत عورت پر پڑی سکتی ہیں, بڑے سخت مسائل ہیں تو گھر سے پردے کے بغیر باہر نہیں جا سکتی. اور وہ آگے پا کر کیا کہہ رہے ہیں, نہیں عورت ہماری طرح آفیسوں میں بھی آنی چاہیے, وہ جینس بھی پہننی چاہیے, وہ ٹی شرٹ بھی پہننی چاہیے. کچھ پاگلوں کو دیکھ کر ہمارے مسلمان بھائی بھی تھوڑے تھوڑے پاگل ہونا شروع ہو گئے, ان پر ایک جنون شروع ہو گیا. پاگلوں کا پاگل تم دیکھ کر یہ بھی پاگلوں جیسے حرکت کرنے لگا. اس نے سوچا نہیں کہ میری شریعت نے مجھ پر جو احکام عائد کیے ہیں وہ کیوں کیے, اس کو شارٹ کٹ اور ہاف فاسٹنگ والا شریعت نے کیوں نہ کہا, اس کو جینس اور ٹی شرٹ شریعت نے کیوں نہ کہا, اس نے سوچا نہیں. اور ہیروئنوں کی ناکامی میں یہ ہیرو بھی زیرو کی طرف آنے لگا, اور وہ سوچا میری بچی ذرا آئیڈل لگے, ماڈل لگے, فیشنیبل لگے, تاکہ جیسے ان کتیوں کو لوگ دیکھتے ہیں اور رس لیتے ہیں, میری لڑکی کو بھی دیکھ کر رس رہنے لگے. تیری لڑکی رس رہنے کے لیے نہیں ہے, اس کو اس لیے اللہ نے نہیں بنایا. تو مغربی تہذیب والے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر بڑی سختی کی ہے, عورت کی مرد کی طرح ہر جگہ دکھنی چاہیے, ہر جگہ آنی چاہیے, ہر جگہ چلنی چاہیے, اس کو بھی مردوں کے برابر رہنا چاہیے, وہ ہر جگہ ہونی چاہیے, تاکہ ہر حوث خور حوث کا شکاری اس کے شکار کرتا رہے, اپنی نظروں سے کبھی اس کو گھائل کرتا رہے, کبھی اپنے ہاتھ کو استعمال کر کے اس کو زخمی کرتا رہے. لیکن پاگل تھے, ان پاگلوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ شریعت نے جو سیفٹی رکھی ہے کہ وہ پورے لباس میں ہو اور ایسا کھلا لباس ہو, چست نہ ہو, جس سے اس کے سارے اعضا نظر آتے ہو. اگر ایسے لباس والی عورتیں ہیں وہ ننگی ہیں, وہ کپڑے پہننے والی نہیں ہیں. حدیث میں ہم کو روپ کاسیا کے آریاں کون سے کپڑے پہننے والی ننگی ہوتی ہیں اور لباس کھلا ہوا جبڑوں کی طرح جبڑے, تاکہ اس کی باڈی نظر نہ آئے, اور پھر اس پر پردہ ڈبل کور شریعت نے رکھا تاکہ اس کی سیفٹی میں ذرہ برابر بھی آنچ نہ آئے. یہ سنبھالنے کی چیز ہے, یہ حفاظت کی چیز ہے. لیکن اس حفاظت کے پردوں کو توڑ کر آج مسلمان ان گہروں کے طریقوں کو اپنا کر اپنی ماں بہنوں کی بڑے عام بچیاں اور بے عزتیاں کرنے کے لیے مارکیٹ میں شو سیل میں رکھتی ہے, تاکہ ہر ایک اس کا سیل اور بھاؤ لگاتا ہے. تو اسلام نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ یسر کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, پوری ترتیب بیان کی. اور آگے جا کر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ما جانا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا, اللہ تمہیں تکلیف میں رکھنا نہیں چاہتا. یہ سارے احکام اس لیے بیان ہو رہے ہیں تاکہ تم پر آسانی ہو جائے, تم ذرا سہولت میں آ جاؤ, تم کو ذرا آرام مل جائے. ورنہ تم اپنی طرف سے اگر کوئی کام کرو گے تو ہو سکتا ہے سختی کی شکار بن جاؤ اور تمہیں سختی بھگتنی پڑے. تو ہر اسلام کے ہر حکم میں انسان کی فطرت, کیونکہ جو اللہ حکم بیان کر رہا ہے وہی خود قرآن میں دوسری جگہ کہہ رہا ہے, پوری کر انسان ضعیفہ, انسان تو بڑا ناتوا کمزور پیدا کیا گیا. خود اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے, اس میں بہت مضبوطی نہیں ہے, یہ بہت کمی اور طاقتور نہیں ہے. جو اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کمزور ہے, ایک باپ خود ہی کہہ رہا ہے میرا یہ بچہ بہت کمزور ہے, پھر اس کو کہتا ہے 10 منٹ اٹھا, کہے گا اس باپ کو پتا نہیں میرا باپ کو میرا بیٹا کمزور ہے. اور جب اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا کمزور ہے اور وہ بہت بھاری وزن نہیں اٹھا سکتا, تو باپ کیا کہے گا, بھائی میرا بیٹا کمزور ہے اس کو 5 کلو اٹھاؤ, کہے گا کہ نہیں کہے گا. وہ خود ہی اس کو کہے گا, جو طاقتور مضبوط بچے ہوں گے ان کو کہے گا یہ بڑے بڑے سامان تم اٹھاؤ اور یہ کمزور ہے تو یہ ہلکے والی تھیلی اس کو دے دو. تو اللہ نے خود کہا پورے کر انسان ضعیفہ, انسان کمزور ہے. किए हैं वो इंसान की आसानी के लिए, फिर हुक्म बयान करके भी उसमें स्टेप बाय स्टेप तदरीज बताई। ये मैं तबीर इसलिए कह रहा हूं, बाजों को जब मैं सीधे हुक्म बयान करता हूं तो समझते हैं कि यार ये बात सत्य है भाई, शरीयत जो कहती है वो सब आसान है, चाहे हमको समझ में आए कि ना आए, हमको समझ में आए ये ना आए तो आसानी है। हाँ, जैसे हमको नमाज बहुत मुश्किल लग रही है, क्यों पढ़ते नहीं है, इसलिए जो पढ़ते हो तो कुछ हमको तो हज पढ़ना आसान, इशराक पढ़ना आसान, चाश पढ़ना आसान और वाफिक पढ़ना आसान, सब आसान, क्यों पढ़ते हैं इसलिए, हम करते नहीं इसलिए हमको मुश्किल नजर आ रहा है। तो गुज़िश्ता जुमा ट्रस्टों पर बात आई थी कि आए दिन सुबह सूरज टुलू होता है, हम तो सोए हुए होते हैं और एक नया ट्रस्ट तैयार होकर आ जाता है कि फुलाना आपका एक ट्रस्ट। ऐसी बातें जब मैं बोलता हूं तो सही हमको बताता हूं, मैं किसी को यह नहीं कहता मैं मेरी बातों पर अमल करो, ये तो नबी भी नहीं कहते, तो खुदा भी नहीं कहता, लाइक जो वाजिबात है, फराइज है, सुनने मौकदात है, उस पर मुसलमानों पर जबरदस्ती की जाएगी। लेकिन गेहूं को मनवाने के लिए इस्लाम को मानो कोई जबरदस्ती नहीं, वो तो साफ है, जिसको मानना है माने, ना मानना है ना माने। तो शरीयत ने ज़कात के हुक्म बताए कि आप ज़कात निकाल रहे हो, कैसे निकाल रही, आपकी सरकार के बलबोते पर आप तो यूं समझ रहे हो कि मैंने एक फरीजा अदा किया, कि ऐसा तो नहीं है किसी गरीबों पर जुल्म हो रहा हो, उस सरकार को देकर गरीबों को नौकर बनाया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो सरकार देकर और उनका काम निकालकर प्रेशर को इस्तेमाल करके उस प्रेशर से उस दबाव से कि हमने आपको सरकार दी, हमने आपको मदद की, आपकी हेल्प की, उसकी बुनियाद पर उसको उसकी फैक्ट्री का चौकीदार और उस पर फैक्ट्री में ज्यादा काम तो नहीं दिया जा रहा, ये आप सरकार देने वालों को सोच रहा है। तो सरकार शरीयत ने बयान की, अगर हम शरीयत को बयान करें, शरीयत को समझें और शरीयत पर अमल करें, मुझे लगता है फैसला आपका होगा मेरा नहीं, हम गरीब फकीरों का क्या फैसला हो सकता है, फैसला आप करो। शरीयत कहती है अगर आप भाई हैं ज़कात निकाल रहे हैं, सबसे पहले अपनी बहनों को देखो, अपने भाइयों को देखो कि मेरे भाई और मेरे बहन में कोई ज़कात का हकदार है कि नहीं, मेरे रिश्तेदार वो रिश्तेदार जो ज़कात खा सकते हैं, जिसके लिए ऊपर का और नीचे का रिश्ता नहीं है, बाप दादा परदादा ऊपर का और ऐसे नीचे बेटा पोता उसका रिश्ता नहीं है, या सोचिए मैरिज वाला रिश्ता नहीं है, शोहर बीवी का रिश्ता नहीं है, तो फिर आप एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं, भाई बहन को दे सकता है, बहन भाई को दे सकता है, मामू भांजे को, भांजा मामू को, दामाद सास को दे सकता है, ससुर बहू को दे सकता है, तो दे सकता है। अभी शरीयत का उसूल है, कितना बेहतरीन उसूल है, इसमें शरीयत
ऐसा तो नहीं है कि मस्जिदों मस्जिदों में, शहरों शहरों
एक ऐसा शहर है, एक ऐसा शहर है मुझे लगता है कि जिसकी बिल्ली भी भूखी नहीं सकती। ऐसे शहर के बंदों के लिए शहर शहर वतन वतन इसलिए जिसने चलता किया जा रहा और उसको फख्र समझते हैं। ये हमारी नामों से कई सभी बयान हो रही है कि गोदरे में ऐसे सकाम देने वाले नहीं है, गोदरे गोदरा वाले सकाम निकालते नहीं है। इतने लोग कहां से सकाम खाने वाले हैं, लोग भेजने रहे होंगे तो ही तो बाहर मांगने निकलना पड़ता है। आपका बच्चा अगर पड़ोस में जाकर खाना मांगता है तो ये अच्छा काम हुआ है, पड़ोस वाला क्या समझेगा? इसका बाप उसको खिलाता नहीं होगा, इसकी माँ इसको खिलाती नहीं होगी। भाई है बहन को सकाम दे, बहन है भाई को सकाम दे, मानो भाई जाए। अब ये बयान करेंगे मसले है, शरीयत है। अब ये बयान करेंगे ट्रस्ट वालों के ट्रस्ट बंद हो जाएंगे और भाई बहन को दे देगा। अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई नहीं है तो महल में देखो, पड़ोस में कोई ऐसा हकदार है जो सकाम का मुस्तहिक है उसकी तहकीक करो, और है तो हर महल वाले पर अगर उसको सवाब डबल लेना है तो महल पची पौड़ो था। अच्छा तुम मुझे पौड़ो था इसे नहीं तो तुम बताओ अपने अपने जगह क्या रहे हैं। हेलो सशु स्वभाव नहीं मरे, इतना चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। पहले शरीयत पर अमल कर, अपनी ख्वाहिश पर नहीं कि पूरा घोटा मुझे जाने कि मैं इतनी सकात निकालता हूँ और मैं सकात के इतने रुपये देता हूँ और सकात से इतनी कितना देता हूँ। ये नामोली और रियाकारी करने की जरूरत नहीं है। शरीयत का हुक्म है, शरीयत का जो लिहाज है उस लिहाज को अपने पड़ोस में दे, अपनी गली में दे, अपने महल्ले में दे कि कोई जकात का हकदार मुस्तहिक ऐसा है जो जकात खा रहा। अब यही उसूल हर गोदरा वाला, हर शहर वाला, हर महल्ले वाला, हर इलाके वाला, हर घर वाला, हर मर्द मुस्लिम, हर मोमिन अपनाएगा। मेरे दोस्तों बताओ, रश बनाने की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी भाई? नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई को पता है बहन जकात के हकदार है कि नहीं। महल उसके लिए बात करना नहीं कर, हर महल्ले वाला ये उसूल कर रहे। अगर महल्ले में नहीं है तो सिटी में दे, सिटी में कोई है कि नहीं, शहर में कोई जकात का हकदार है कि नहीं। वो नहीं है तो फिर उस शहर से बाहर जा, शरीयत का उसूल है। लेकिन इस उसूल को बताने में मेरा ट्रस्ट बंद हो जाएगा, उस ट्रस्ट पर तो मेरा नाम चलता है कि हम इतनों की मदद करते हैं, हम इतनों को खिलाते हैं, हम इतनों को कपड़े देते हैं, हम इतनों को किट देते हैं, हम इतनों की खबर गिरी न करते हैं। किसकी करते? तुम करते हो, उम्मत करती है। उम्मत उम्मत के रुपयों पर नाचना और उम्मत के रुपयों पर डांस करना और नाम अपना बनाना, अरे भाई ये फॉर्मूला अच्छा समझ में आ गया। मैं कहता हूं ऐसे नहीं, ला तेरी कितनी जकात है और तू दे भाई, तेरा काम हो गया था चला जा, अब तुझे किसी की फिक्र नहीं, अल्लाह तुझे नहीं पूछेगा, तो उसका तो एक रुपया नहीं होगा। हम ट्रस्ट बनाए, हम ये बनाए, क्या कहते हैं उलमा को अपने के परोट दे, लाभे पांच एकड़ मेरे हाथ में दे दे और मैं चुपचाप सवालियों को दे दूंगा। लेकिन एक बार भी जगह लेकर नहीं आएंगे ना, अपने तो गोदरा वालों पत्थू बिलाई है, पची जमीन ले। क्या बनता है दिमाग का गंदा, क्या लोगों से पैसे जमा करें, हाँ उलमा के नाम की भीख मांगे, उलमा को भिखारी साबित करें, इसको खैर खाई आ गई। मैं बताता हूं खैर खाई जितने पांच एकड़ है वो एकड़ लिख दे कि भाई उलमा के नाम कोई भी नहीं जानेगा, अल्लाह और तू जानेगा, अल्लाह तुझे उसके जन्नत में कई सौ एकड़ देगा। तुम्हारी भी एकड़ का ऐसा है, लेकिन खबर थोड़ी पर है तो पेपर हम आउट आउट हुए कि हाजी साहब ने इतने एकड़ उलमा को जकात जमीन दी, वो भी जकात दी पिछड़ा। ये मकसूद है। मैं असल आप लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं, मैं तो बदनाम हुई, मुझे कुछ मिलने वाला है, मुझे कुछ लेना है, लेकिन उम्मत दीन पर आए, उम्मत شریعت کے طریقے کو کہاں پہ سکھاؤ، مسائل بیان کرو، سمجھاؤ، کتنا آسان فارمولا ہے. اس میں کسی کا نام بھی نہیں ہوگا، کسی کے لیے بھیک بھی نہیں مانگنی پڑے گی، کسی کے لیے اعلان بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور جو ٹرسٹ والے ہیں ان کو بھیک مانگنے نکلنا بھی نہیں پڑے گا. ہے کیا نہیں؟ شریعت کا اصول، شریعت کے اصول پر عمل بھی ہو جائے گا، اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب پر عمل بھی ہو جائے گا، اور کام بھی پورا ہو جائے گا. کسی کو بھیک بھی نہیں مانگنی پڑے گی، لوگ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ گودرے میں ایسے ڈکار نکالنے والے نہیں. اتنے سارے لوگ ہیں، ان کی زکات مانگنے کے لیے پورے اسٹیٹ میں پھرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے بیوہ ہیں اور ہمارے یہاں اتنے. اور ان کی حالت تو دیکھو، اس ہفتے کی بات کر رہا ہوں. ایک ٹرسٹ والے کسی کو کٹ بھیج رہے ہوتے، ایک آدمی نے دیکھا کہ بھائی کیا کر رہا ہے، وہ کٹ دے رہا ہوں بیچاری ایسی ہے ویسی ہے، تو کیا بیچاری کے پاس سونا ہے کتنا ہے وہ تو پوچھ، اور اس کو پکڑ کر لے گیا جس کے ساتھ گاڑی میں بھاگ تھا. مہینے کے 15-16 ہزار اس کی آمدنی، سونا الگ پلوٹ الگ. اب بیوہ کو کام کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے، کوئی بھی رشتے دار ہوتا ہے، کھانا تو وہ کا وہیں سے آ جاتا ہے، کپڑے ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں. تو جو بھی زکات کے پیسے آپ دیں یا جو بھی خیرات آتی ہیں وہ جمع ہوتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے وہ زکات نکالنے والی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا. اس کو یہ لگتا ہے جیسے BPL کا سکہ ہے، چلے گا مرتے دم تک، اڑاتے بھی چلے گا، چاہے کتنے بھی مالدار ہو جائے BPL ہی رہے. ایسا یہ بھی سمجھتے ایک مرتبہ زکات کا لگ گیا تو زکات چلتی رہے گی. تو زکات کھاتے رہو کھاتے رہو، چاہے کتنے بھی مالدار بن جائے، بنگڑے کے بنگڑے ہو جاتے ہیں لیکن زکات کھاتے رہتے ہیں. تو یہ شریعت کا اصول ہے، اس اصول پر ہم میرے دوست کو عمل کریں، اس اصول پر عمل کریں تو ہمیں کوئی ٹرسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو بھی ٹرسٹ والے آئے ان کی ہم خدمت قبول کریں، ان کو خدمت میں لگائیں. لیکن میں نے بتایا تھا ان کو کہہ دیں بھائی آپ کے پاس جو بھی حقدار آئے، جو بھی حقدار آئے اس کو ہمارے پاس آپ کی سفارش اور چٹھی لکھ کر بھیج دیجیے، انشاءاللہ ہمیں جتنا بھی اللہ توفیق دے گا ہم کو پہنچا دیں گے. اس میں کیا ہوگا کہ بیچ میں جو اس کی نوکری کرنی پڑے گی وہ نہیں کرنی پڑے گی، ورنہ اس کو فوری آؤ جو رات کو آئی ہو، کھلا ٹرسٹی کی صحیح نہیں ہوئی ہے، کھلا سبھی سے مشورہ نہیں ہوا ہے، ابھی جس کو تحقیق کرنے کے لیے اس نے تحقیق نہیں کی، اتنے میں تو وہ ہاسپٹل میں سے قبرستان میں شفٹ بھی ہو جاتا ہے اور اللہ جنت میں اس کو تندرست بھی کرتا ہے. تب یہاں پہ تمہارا 2000 روپے پاس، تمہارا 2000 نہیں کرے اتنا 2000، جس میں اس بیمار کے کپڑے کے صابن پاؤڈر بھی نہیں آئے گا، وہ مر بھی گیا، اس کے جنا اس کے کفن دفن کا خرچہ اس سے زیادہ ہو گیا، تب یہ 5-10 دن کے بعد 2000 ترقی کر رہے ہیں، اس سے تو سیدھا وہاں پہنچا دے گا، وہ اس کو لگے گا تو دے دے گا، اس کا کام تو ہوتا ہو جائے گا. کتنی آسانی! ایک تو یہ بات، دیکھو وقت تو ابھی سے ہو گیا. دوسری بات اے سی والے، اے سی زیادہ تفصیل چاہیے میرے پاس آئے میں سمجھاتا رہوں گا، پوچھ پوچھ کرو تو اچھا ہے. میرے پاس بھی مفتی علیہ کرام بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ، میں انہیں کہ میرے پاس ہی آؤ، مفتی علیہ کرام سے آپ مسئلہ بیان کرو کہ بھائی ایسے ایسے ہم کیسے زکاتے ہیں. نمبر دو، اے سی 40-50-60 ہزار کی ایسیا، 1 ٹن 2 ٹن 3 ٹن، مزہ آتا ہے. واہ واہ ایسیا ہے، اپنا ہے ایسیا ہے، چھوڑ سب چھوڑ ہے. لیکن ان سب کو پوچھو، ایک ایک کو میں گواہ بناتا ہوں قیامت کے دن پوچھوں گا، یہاں بھی اور جو سننا ہے ان کو بھی، جن جن مسجدوں میں اے سی لگائی ہیں جا کر پوچھو کہ تم نے کیا وولٹیج بڑھانے کی عرضی دی اور وولٹیج لگائے، زیادہ وولٹیج لگائے. ایک آدمی نے تم کو کہا لو بھائی تمہیں ایک آدمی کو 500 روپے دے، گھرنے والے کو نہیں بھائی 50 روپے کی چیز دے دے، اب 450 تو گھرنے والے نے کہا بھائی گھرنے میں سے 450 نکال دے، آپ اس کی جگہ 650 نکال لو تو چور ہوئے کہ نہیں؟ بولن بھائی کیوں ڈر رہے ہو؟ چور ہوئے نا، چور ہوا، کیونکہ رہنے تھے 450 کو پتا نہیں 600 نکال لیے یا 500 چھوٹے نکال لیے، 50 کٹوانے کے تو کٹوائے نہیں، 50 بھی رہتے آیا تو چور ہوا. اب جیبی والوں نے کہا تم نے 500 گرام فالٹ دیے ہیں تو 500 گرام کی بجلی تو لے، اب اسی درگاہ 600 گرام یا 550 گرام لے رہا ہے تو چور ہوا کہ نہیں؟ ہوا کہ نہیں بھائی؟ چور چور بھی ہے، اے سی بھی چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو بہت شوق ہے، اب وہ تو بل آواز ہے، لو بل والا آئے تو سمجھا ہوں کہ ادھر چھوڑی تھا تو یہ چوری ہے. جاؤ مسجدوں والوں کو پوچھو کہ 4-4 जजेस एशिया को तो टंकी लगाई है, लाओ तुम्हारा बिल, कितने बोल तुम ले रहे हो और जीवी की कितनी चोरी कर रहे हो, जीवी की नहीं पूरे गोधरा की चोरी कर रहे हैं, पूरे गोधरा की चोरी, गैरों के भी चोर है, मुसलमानों के भी चोर है, जिन मस्जिदों के ये आलम होंगे वहां से क्या दीन फैलेगा, क्या सही दीन फैलेगा। और दूसरी बात, अगर कोई मस्जिद वाला कहता है कि आप तो मांगे दूस है, तो वो भी सही है, खयानत कर रहा है, वक्फ के माल में खयानत कर रहा है, क्योंकि एसी सब गवा रही हो, झूठ मत बोलियो, एसी से रमजान में चलती है, बराबर भाई, रमजान के अलावा चलती है नहीं चलती है, और रमजान में बहुत बहुत पूरे दिन में 3 घंटे चलते हैं, कितने घंटे 3 घंटे, फजर में जरूरत नहीं होती है, जोहर असर मगरिब और ईशा इसमें मिलाकर 3 घंटे और 30 3 घंटे 90 हुए, कितने 90, 3.5 दिन ऐसी चलती है, 3.5 दिन ऐसी, अगर 3.5 दिन ऐसी चलाने के लिए वक्त के माल से 4 किलोवाट बिजली खरीदता है, हालांकि मस्जिद के पंखे आम पूरे साल में चलते हैं तो 2 किलोवाट में हो जाता है, और एसी चलाने के लिए वो 2 किलोवाट और ज्यादा मांगकर मस्जिद के वक्फ खर्चा करता है या पूरे साल उसका बिल बनता है, तो ये वक्फ का हाई है, खयानत कर रहा है, ऐसे ट्रस्टी को हटाया जाए, ये भी गुनाह है, वक्फ के माल को बिना जरूरत और बिना वजह खर्च करना यह भी गुनाह है। रोजा भी रखेगा तो रोजेदार है, और ऐसी रेशियो से हवा भी हदीस में आता है, ला यसरिक सारिक वही ला यसरिक मोमिन, चोर जब चोरी करता है वो मोमिन नहीं रहता है, वो मोमिन नहीं रहता है। एक दीवाने इब्न अब्बास से पूछा कैसे, हदीस में आता है उसका ईमान निकल जाता है, उसका ईमान निकल जाता है, और तरावी भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, और चोरियों की ऐसी चल रही है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह समझ देता है, फरमाए देखा देखी कंप्यूटेशन वो लोग चाल रहे हैं अपने छेड़ा, ताकि हमारे नमाज ही पढ़े, बस यही एक मकसद है कि अपने ऐसी नहीं लगाई है तो नमाज ही कमाल हो रहे हैं, तो जाने दे, तुझे क्या मतलब, अल्लाह तुझसे पूछेगा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं गया, बस यही वजह, देखा कि एक साल ऐसी नहीं लगाई तो नमाजी कम हो गए, तो दूसरे साल हर लगा गए, और किसी ने जीबी वाले से नहीं कहा कि इतनी एशिया चलाने के तो वोट कितने लाने पड़ेंगे और कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, किसी ने नहीं पूछा, न एसी लेने वाले ने, न एसी लेने वाले ने, ये चोर है। इब्न अब्बास से पूछा कि भाई ईमान कैसे निकलता है, ईमान ईमान कैसे निकल जाता है, तो इब्न अब्बास ने फरमाया ये ईमान है उसके अंदर है, मोमिन के अंदर, लेकिन जब वो चोरी के एसी चलाता है तो उसका ईमान ऐसे निकल जाता है, फिर हाँ चोरी के एसी बंद कर देगा, चोरी का बिल भर देगा, कितनी चोरी के उसकी माफी मांग लेगा पूरे धोखा वालों से, तो हाथ ही नहीं उसकी तरह से ऐसे वापस ईमान आ जाएगा, कौन मांगने जाएगा, जीबी से माफी नहीं मांगते, धोखा वालों से माफी मांगी जाएगा, ये चोर ऐसी वाले हैं, जहां जहां मस्जिदों में ऐसी तहकीक करो और उनको मुतलब करो, जगाओ, ये खाली खाली सिर्फ लोगों को बनाने के लिए तुम चोरियां करते हो, एकदम नहीं आती, जहां से नींद फैलना चाहिए उन जगह से चोरियां फैलेगी, लोग क्या सुन रहे हैं, क्योंकि सबको लगा ये मुफ्ती भी है, इमाम मुफ्ती भी है लेकिन कहता नहीं है, इमाम मौलवी भी है कहता भी नहीं है, इमाम तकबे वाला भी पता नहीं मेरी जापान तकवा होगा, इसलिए वो तकवा भी नहीं टूटता है, ऐसी चल भी रही, ऐसे निकल जाता है, ईमान से निकल जाता है, ऐसे हालत में मौत आ गई कि ऐसी चोरी की चलती होगी और मौत आ गई, लोग कहेंगे मस्जिद में मरा, तो मस्जिद में मरा, चोरी की ऐसी की ठंडक हासिल करते हुए मरा, हाँ जैसे चोरी का माल खाते हुए कोई मर जाए तो शहीद हो जाए, नहीं हो, तो इसकी भी बेफिक्र करें, समझाएं। दूसरी बात, मस्जिदों में मुसाफिर, पहले भी बताया था, मुसाफिर और मोतकिफ एहतिकाफ करने वाले के लिए सोना जायज है, उसके अलावा किसी के लिए सोना जायज, प्रमुख भी परमिशन नहीं दे सकता, हाँ प्रमुख अपने घर में 15-20 एसी लगाकर पूरे महल को सुनाए तो उसमें दोस्तों का बहुत अच्छा प्रमुख है, अल्लाह उसके माल में बरकत दे, लेकिन अपने घर में खुदा के घर में नहीं, क्योंकि ये वक्फ का माल है और किसी की परमिशन परमिशन नहीं है, वक्फ के माल में शरीयत की परमिशन चाहिए। मोतकिफ ला यजुज़ु नौम फिल मस्जिद इल्ला लिमोतकिफिन अव मुसाफिर, इंडिया इंडिया के अंदर लिखा है کہ مصعب نے موتبی کس کے لیے مسجد کے اندر سونا جائز ہے. اب دیکھو مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ شیطان ہے وقف کا مال. ابھی مجھے سرمائی مجھے کسی نے بتایا 55,000 گرایا وقف کے مال سے, اور وہ کیا رہا ہے سو رہے کرے گا. آجی صاحب نے بتایا کہ قرآن بننے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے, کوئی کیوں سویا ہے کوئی کیوں سویا, کس نے ان کو دی اجازت. تو یہ سب جاننا پڑے گا, لیکن ہم بولیں گے نہیں, کیونکہ ہم بھی تو سونے والوں میں ہوتے ہیں, سونے والوں میں تو ہم بھی ہوتے ہیں, ہماری بھی تو جگہ کنفرم ہوتی ہے. پھر اسی پر آپ نہیں رکھتے بچوں کو آگے سے دیکھ رہا صاحب, سب سب کو میں جانتا ہوں, من خود بھی شنا سب پیلانے پار سر, بڑے بڑے جھوٹے والوں کو میں بہت جانتا ہوں, الحمد للہ بڑے بڑے مالداروں کو تو بہت جانتا ہوں. گھر کا 10,000-15,000 بل آئے گا, اسے تو مسجد میں چلتی ہے نا, اس پہ جا کر سو جاؤ نا, گھر کا بل تو نہیں آئے گا. مسجد کا روڈ بڑھیں گے, گھر کا اپنے کو بھرنا پڑے گا. اللہ مجھے آپ کو تمام کو کہنے سننے سے زیادہ ہم کی